पेज नंबर 90, चैप्टर नंबर 12,
नावल अमर बेल, तसनीफ उमेरा अहमद, सौती पेशकश लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर द ब्लाइंड, www.LITERARIA.EDU.PK।
वो नानो के पीछे उनके बेडरूम में दाखिल हो गई थी। बैठो, नानो ने अंदर दाखिल होते ही उसे कहा था। वो खामोशी से सोफा पर बैठ गई। नानो खुद अपने बेड पर बैठ गई। तुमने उमर से क्या कहा था? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उन्होंने उसी खड़े हुए लहजे में उससे पूछा था। मैंने ठीक अंदाजा लगाया था, ये सब कुछ उमर ही का किया धरा है, उसने नानो के सवाल पर सोचा था। मैं समझी नहीं नानो, मैंने इतना मुश्किल सवाल तो नहीं पूछा, सिर्फ यही पूछा कि तुमने उमर को क्या कहा था। नानो किस बारे में? इस घर से चले जाने के बारे में। अलीजा बिल्कुल साकित होकर रह गई। ये आप क्या कह रही हैं नानो, मैंने उससे क्या कहा है? तुम्हारी वजह से वो घर छोड़कर चला गया है और तुम कह रही हो कि मैंने उससे क्या कहा है। इस बार नानो का लहजा पहले से भी ज़्यादा तल्ख था। वो हैरानी से उनका चेहरा देखती रही। नानो, मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, आई स्वेयर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वो रोहान सी हो गई थी। तो फिर वो किसी वजह के बगैर ही घर छोड़कर चला गया है? इस पर नानो का लहजा तंजिया था। मुझे नहीं पता कि वो क्यों घर छोड़कर गया है, बट बिलीव मी नानो कि मैंने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा। मैं आखिर उसे ऐसी बात क्यों कहती? वो अपनी सफाई देने की कोशिश कर रही थी। तुमने उसे घर छोड़ने के लिए नहीं कहा, मगर तुमने ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वो यहाँ नहीं रहे। वो नानो के इस इल्ज़ाम पर हक्का बक्का रह गई। नानो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने कभी ये नहीं सोचा था लीजा कि तुम इस तरह की हरकतें करोगी। तुमने मेरी सारी उम्र की मेहनत पर पानी फेर दिया है। नानो प्लीज़ आप इस तरह मत कहें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उमर घर छोड़कर चला गया हो। अलीजा, मैंने उससे बात की थी। तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने उसे ऐसे ही जाने दिया है? उसी ने मुझे बताया था कि तुम्हें उसका यहाँ रहना पसंद नहीं है और वो यहाँ रहकर हाम हाँ की टेंशन खड़ी नहीं करना चाहता, और मैं यही जानना चाहती हूँ कि तुम्हें उसके यहाँ रहने पर क्या एतराज़ है, नानो ने तेज़ आवाज़ में बात करते हुए कहा था। अलीजा का चेहरा सुर्ख हो गया। नानो, वो झूठ बोलता है, वो झूठा है। और तुम नानो, उसने आपसे एक बात कह दी और आपने सोचे समझे बगैर उसकी बात का यकीन कर लिया। अब मैं जब एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ तो आप मेरी बात ही सुनने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल रोहानसी हो रही थी। आपको उमर की हर झूठी बात पे यकीन आ जाता है, मगर मेरी बात पे यकीन नहीं है। उमर झूठ नहीं बोलता, नानो के जुमले ने इसकी रंजीदगी में इजाफा कर दिया था। और मैं, आप समझती हैं मैं झूठ बोलती हूँ? मुझे तुमसे फजूल बहस नहीं करनी, मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें उमर का यहाँ रहना क्यों पसंद नहीं है। नानो, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि मुझे उसके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ नहीं है। उससे ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है, यहाँ तो बहुत से लोग आते और रहते हैं। क्या मैंने पहले कभी किसी के रहने पर एतराज़ किया है? फिर अब उमर के रहने पर क्यों करूँगी, उसने के बाद एक वजाहत देते हुए कहा था। आप उसे दोबारा वापस बुला लें। नानो कुछ देर उसे देखती रही थी। वो अब यहाँ वापस नहीं आएगा, ये बात साफ साफ कहकर गया है। कम अज कम रहने के लिए तो दोबारा वापस नहीं आएगा। आप बताएं नानो, इसमें मेरा क्या कसूर है? वो अपनी मर्जी से यहाँ आया, अपनी मर्जी से वापस यहाँ से चला गया, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। अगर तुम उसके साथ वो सलूक ना करती जो तुमने किया, तो शायद वो इस तरह से यहाँ से ना जाता। नानो अभी भी अपनी बात पर जमी हुई थी। मैंने उसके साथ क्या सलूक किया? नानो, मैंने तो उसके साथ कोई बुरा सलूक नहीं किया। अलीजा, तुमने मुझे बहुत मायूस किया है। मुझे कम अज़ कम तुमसे इस तरह के रवैये की तवक्को नहीं थी। इतने सालों से मैं इतनी मोहब्बत से तुम्हारी परवरिश करती रही हूँ और तुमने चंद हफ्तों में इस सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। क्या सोचता होगा उमर कि मैंने तुम्हें इस तरह की तरबियत दी है? और जब वो जाकर अपने बाप से इस बात का जिक्र करेगा तो जहांगीर मेरे और तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा? ये घर सिर्फ तुम्हारा नहीं, उन सबका भी है। ये और बात है कि वो लोग यहाँ बहुत कम आकर रहते हैं, मगर ना रहने से इस घर पर उनका हक तो खत्म नहीं हो जाता। उम्र हो या तुम्हारा कोई और कजन, तुम्हें कोई अख्तियार हासिल नहीं कि तुम उनके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ करो या अपनी नापसंदीदगी का इजहार अपने रवैये से करो। वो चुपचाप नानों की बातें सुनती रही थी। नानों बहुत दफ़ा इसे डांट दिया करती थी, मगर आज उनका रवैया बहुत ज़्यादा सख्त था। जिस तरह आज वो उससे बात कर रही थी, इस तरह उन्होंने पहले कभी नहीं की थी। उम्र के साथ तो खैर जो कुछ तुमने किया सो किया, मगर आइंदा ये हरकत फिर कभी मत करना। तुम अब बच्ची नहीं हो जिसे सारी बातें समझाना पड़े, बड़ी हो चुकी हो, हर चीज़ समझ सकती हो। बेहतर है कि अपने रवैये को ठीक करो। अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम करना है। अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। वो चुपचाप, उन्होंने एक लंबे चौड़े वास के बाद बात खत्म कर दी और शौक वो शौक उन्होंने एक लंबे चौड़े वास के बाद बात खत्म कर दी। वो शौक की हालत में उनके बेडरूम से निकल कर आई थी। सारा कसूर मेरा है और किसी का नहीं, उम्र का भी नहीं। उसके यहाँ से चले जाने की वजह मेरी हर खूबी हामी में तब्दील हो गई है। उसके यहाँ से चले जाने की वजह से मेरी हर खूबी हामी में तब्दील हो गई है। नानों को मैं बदतमीज़ लगने लगी हूँ। उम्र की नानों को परवाह है, मेरी नहीं। वो अपने बेडरूम की तरफ जाते हुए कुछ और ही दिल गिरफ्तार हो गई थी। मेरी किसी को ज़रूरत ही नहीं है, मम्मी को नहीं, पापा को नहीं, नानों को भी नहीं। ज़रूरत तो उम्र जैसे बंदे की होती है जिसकी दुनिया में कोई वैल्यू हो। उसकी रंजीदगी में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था। किस कदर फ्रॉड इंसान है, मुझसे और तरह की बातें करता था और मेरे जाते ही यहाँ चक्कर चलाने शुरू कर दिए। मुझे अपना दोस्त कहकर उसने मेरे साथ ऐसा किया और उम्र जहांगीर के लिए उसकी नापसंदीदगी में कुछ और इजाफा हो गया था। दोपहर को मरीद के बुलाने पर भी वो लंच के लिए नहीं आई। उसका ख्याल था कि नानो इसे आकर खुद ही लंच के लिए कहेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नानों ने इसे दोबारा लंच के लिए नहीं कहा और वो भी अपने कमरे से नहीं निकली। शाम को सोकर उठने के बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। इस वक्त इसे वाकई भूख लग रही थी। नहाने के बाद नीम दिल्ली से वो अपने कमरे से निकल आई थी। लाउंज में दाखिल होते ही कानों में पड़ने वाली आवाज़ से उसका खून खोलने लगा था। वो उमर की आवाज़ थी। अगर वो लाउंज में दाखिल ना हुई होती और नानो और उमर ने इसे ना देखा होता तो वो वहीं से वापस अपने कमरे में चली जाती। इस वक्त वो किसी सूरत भी उमर की शक्ल देखना नहीं चाहती थी, मगर लाउंज में दाखिल होते ही उमर की नज़र इस पर पड़ गई थी। ना सिर्फ इसने अलीज़ा को देख लिया था बल्कि फ़ौरन उसे मुहातिब किया था। हेलो अलीज़ा, इतनी जल्दी वापसी, उसने कुछ हैरानी से अलीज़ा से पूछा था। अलीज़ा ने एक नज़र सोफ़ा पर बैठे हुए उमर पर डाली और फिर नानों की सारी नसीहतों को बुलाए ताक रखते हुए कोई जवाब दिए बगैर किचन में चली गई। अपने पीछे से एक बार फिर उमर को अपना नाम पुकारते हुए सुना, मगर इस वक्त वो दुनिया का आखिरी शख्स था जिसे वो बात न करना चाहती थी। अगर ये यहाँ से चला गया है तो अब यहाँ क्या लेने आया है, उसने किचन में दाखिल होते हुए तल्ही से सोचा था। और उसे इस बात से क्या कि मैं इतनी जल्दी वापस क्यों आई हूँ। इस वक्त इसका गुस्सा आसमान से बातें कर रहा था। मुरीद बाबा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दें, उसने किचन में दाखिल होते ही हानसा माँ से कहा था। अलीज़ा बीबी, आप कुछ देर इंतज़ार कर लें, मैं भी खाना लगाने ही वाला हूँ, फिर आप सबके साथ ही खाना खा लीजिएगा, हानसा माँ ने उससे कहा था। नहीं, मुझे अभी कुछ खाना है और इन सबके साथ बैठकर कुछ नहीं खाना, उसने ज़िद की थी। हानसा माँ ने कुछ हैरानी से उसे देखा। अलीज़ा ने कभी ज़िद ना की थी और फिर इस तरह की ज़िद। उसने कुछ कहने की बजाय खाने की कुछ चीज़ें किचन की टेबल पर रखनी शुरू कर दी। इस वक्त अलीज़ा ने लाउंज में से नाना की आवाज़ सुनी थी, वो उसका नाम पुकार रहे थे। वो बेख्तियार किचन से बाहर निकल आई। अलीज़ा, तुम रात को भी मुझसे मिली ही नहीं, आते ही सो गई, उन्होंने उसे देखते ही शिकवा किया था। कराची से इतनी जल्दी क्यों वापस आ गई, उन्होंने इसे अपने साथ लगाते हुए कहा। बस मेरा दिल नहीं लगा वहाँ, हालांकि पापा तो बहुत कह रहे थे और नाराज़ भी हो गए थे मेरे इस तरह से जल्दी आ जाने पर, मगर मैं आप लोगों को मिस कर रही थी, उसने एक बार फिर झूठ बोलना शुरू कर दिया था। बहुत अच्छा किया इतनी जल्दी वापस आकर, नाना ने उसका कंधा थपथपाते हुए कहा था और कुछ मुतमईन हो गई थी। कम अज़ कम नाना तो इससे नाराज़ नहीं थे, उसने सोचा। उमर नानों के साथ सोफे पर बैठा बड़ी खामोशी से उसकी नानों के साथ होने वाली गुफ्तगु सुन रहा था। इस बार उसने अलीज़ा को मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। मुरीद से कहो खाना लगा दे, नाना ने नानों से कहा था। ग्रैंडपा, मैं तो खाना नहीं खाऊंगा, उमर उठ खड़ा हुआ था। क्यों, अब तुम्हें क्या हुआ है, कुछ भी नहीं, बस मुझे अभी थोड़ी देर में वॉक पर जाना है, और अब मैंने खाना वॉक से वापसी पर खाना शुरू कर दिया है। ये एक इंतहाई अहमकाना हरकत है, वॉक से वापसी पर खाना, नाना ने इसे झिड़कते हुए कहा था। मैं तो अपनी कुछ चीज़ें लेने आया था, ये तो बस ग्रैनी ने पकड़ कर बिठा लिया, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। जो चीज़ें तुम्हें लेनी है ज़रूर लो, लेकिन खाना खाए बगैर तुम यहाँ से नहीं जा सकते, समझे तुम, नाना ने इसे डांटते हुए कहा था। उसने कुछ और कहने की कोशिश की थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी थी। अलीज़ा को एक बार फिर अपना आप बैकग्राउंड में जाता हुआ महसूस हुआ था। यूं लग रहा था वहाँ सिर्फ उमर और नाना नानों ही थे, कोई चौथा शख्स नहीं, किसी चौथे शख्स की ज़रूरत ही नहीं थी। नाना की पूरी तवज्जा अब उमर पर मरकूज थी, वो मलूल होने लगी थी। हंसामा ने खाना लगा दिया था और अलीज़ा ने बड़ी खामोशी के साथ खाना खाया था। उमर के साथ टेबल पर इसकी दोबारा कोई बात नहीं हुई थी, ना ही वो इसकी तरफ मुतवज्जो था। वो नाना से बातों में मशगूल था, और खाना खाने के बाद नाना कपड़े बदलने अपने कमरे में चले गए थे, नानू कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में गई थी, और उनके जाने के बाद उमर भी अपने कमरे में चला गया था। अलीज़ा डाइनिंग टेबल पर बिल्कुल अकेली बैठी रह गई थी। बड़ी बेदिली के साथ वो अपनी प्लेट में मौजूद खाना खाती रही, फिर एकदम प्लेट छोड़कर उठ खड़ी हुई थी। उमर के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देने से पहले वो हिचकिचाई थी, फिर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। यस, कम इन, अंदर से उमर की आवाज़ उभरी थी। वह आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गई। उमर कारपेट पर एक बैग खोले कुछ चीज़ें उसमें रखने में मसरूफ़ था। अलीज़ा को देखकर कुछ हैरान हुआ था, मगर फिर इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। आओ अलीज़ा, वह बदस्तूर अपने काम में मसरूफ़ था। बैठ जाओ, एक बार फिर अलीज़ा को देखते हुए कहा था। मैं बैठने के लिए नहीं आई, उसने हफकी से कहा था। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ था और फिर होले से हंस दिया। अच्छा, वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ हो गया था। आपने नानों से मेरे बारे में क्या कहा है, उसने सर उठाकर उसकी तरफ देखा। कुछ भी नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने नानों से कहा कि मैंने आपको इस घर से चले जाने के लिए कहा है। कम ऑन अलीज़ा, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, इस बार उसने एक बार फिर बड़े पुरसकून और ठहरे हुए लहजे में कहा। आपने नानों से कहा कि मैं यहाँ आपका रहना पसंद नहीं करती। हाँ, ये मैंने कहा था, उसका लहजा अब भी पुरसकून था। आपने ये क्यों कहा था, वो तेज आवाज में बोली थी। क्या मैंने गलत कहा है, उसने बहुत सीधा सवाल किया था। वो चंद लम्हे उसका चेहरा देखती रही, वो उसके जवाब का इंतज़ार किए बगैर एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया। आपने नानों को मेरे खिलाफ कर दिया है, वो किताबों के शेल्फ की तरफ जाते जाते मुड़ा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आपने किया है। मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी खुशी और कन्वीनियंस के लिए किया है, इसमें ग्रैनी को तुम्हारे खिलाफ करने की अहमकाना हरकत शामिल नहीं है। वो अब किताबें शेल्फ पर से उठा रहा था। आपकी वजह से नानो मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रही, इस पर वो रोहानसी हो गई थी। उसने मुड़कर अलीज़ा को देखा था और फिर बड़ी नरमी से कहा था, वो अगर ऐसा कर रही हैं तो गलत कर रही हैं, मैं उनसे बात करूंगा। आपको अब उनसे कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ, यू आर अ क्रुक। इस बार उसके रिमार्क्स पर पहली बार उमर के माथे पर कुछ बल आए थे, मगर इसने कुछ कहा नहीं था, सिर्फ खामोशी से उसे देखता रहा। आप सिर्फ नानों को ये बताएं कि मैंने आपसे यहाँ रहने के बारे में कुछ भी नहीं कहा, ना ही मैंने आपके यहाँ रहने पर कोई एतराज़ किया है। वो अब भी खामोश था। अब नानों को जाकर कहें कि मैंने आपके यहाँ रहने पर कोई नापसंदीदगी का इजहार नहीं किया, हालांकि तुम मेरे यहाँ रहने को नापसंद करती हो। मैंने आपसे ऐसा कब कहा, तुमने कहा नहीं, मगर फिर भी तुम मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं करती, आप गलत कह रहे हैं। अलीज़ा, मैं कुछ छोटा बच्चा नहीं हूँ और सही गलत तुमसे बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ। तुम्हें याद है उस दिन जब मैं तुम्हें परफ्यूम सिखा रहा था और मैंने अपना फेवरेट परफ्यूम तुम्हें दिखाया तो तुमने उसे गिरा दिया। अलीज़ा का रंग उड़ गया था। मैंने जानबूझकर परफ्यूम नहीं गिराया था, मेरे हाथ। अलीज़ा, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, ना ही मुझे बेवकूफ़ समझो, वो बात करते हुए बेहद पुरसकून था। इसी तरह उस दिन प्लांट्स की कटिंग करते हुए मैंने तुमसे कहा ये मेरा फेवरेट प्लांट है, और तुमने उसकी सबसे खूबसूरत शाख काट दी। इस बार वो कुछ बोल ना सकी। उमर वाकई बेवकूफ़ नहीं था। मैंने बहुत पहले तुम्हें बता दिया था कि मैं यहाँ तुम्हारी जगह लेने नहीं आया हूँ, थोड़े अरसे के लिए आया हूँ, फिर वापस चला जाऊँगा, मगर इसके बावजूद मुझे महसूस हुआ कि तुम मेरी तरफ से अपना दिल साफ नहीं कर पाई। शायद तुम्हारे दिल में मेरी तरफ से कुछ हदशात थे और मैं कोशिश के बावजूद उन्हें खत्म नहीं कर पाया, इसलिए मैंने बेहतर यही समझा कि ये जगह छोड़ दूँ। बस इतनी सी बात थी और मैंने ग्रैनी से भी अब इन सब बातों के बारे में कुछ भी और मैंने ग्रैनी से भी इन सब बातों के बारे में कुछ भी नहीं बताया। उन्होंने जब मेरे बाहर जाने के फैसले के बारे में बहुत इसरार किया तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि तुम मेरे यहाँ रहने को पसंद नहीं करती। इससे ज़्यादा मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। वो बहुत संजीदगी से इसे बताता जा रहा था। वो एक बार फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गया था। वो सुर्ख चेहरे के साथ उसे देखती रही। वो अब उसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था। प्लीज़ आप वापस आ जाएं। उमर ने एक गहरी सांस लेकर उसे देखा था। आई एम सॉरी अलीज़ा, मैं यहाँ से नाराज़ होकर नहीं गया, अपनी खुशी से गया हूँ और अक्सर आता जाता रहूँगा, उसने नरमी से कहा। प्लीज़ आप वापस आ जाएं। जब तक आप वापस नहीं आएंगे नानों का मूड ठीक नहीं होगा। आप समझते नहीं हैं वो। उमर ने इसे कुछ उलझी हुई नज़रों से देखा। वो बेहद परेशान नज़र आ रही थी। मैं दोबारा कोई ऐसी हरकत नहीं करूँगी जिससे आपको शिकायत हो। वो उससे नज़रें नहीं मिला रही थी। अलीज़ा, मैं वापस नहीं आ सकता, उसने मायूसी से उमर को देखा था। जहाँ तक ग्रैनी की बात है तो वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं, वो तुमसे नाराज़ नहीं हो सकती। हाँ वो तो मुझसे बहुत मोहब्बत करती हैं, मगर फिर भी ये घर मेरा नहीं है, मेरा तो अब कोई घर है ही नहीं। उमर ने उसे अपने दोनों हाथ आंखों पर रखते हुए देखा था और वो जान गया था वो क्या छुपाने की कोशिश कर रही थी। चंद लम्हों तक वो इसे हैरान परेशान आंखों पर हाथ रखे सिसकियां भरते देखता रहा। फिर वो उसके करीब आ गया था। अलीज़ा, क्या हुआ, रोने वाली क्या बात है, उसने बच्चों की तरह उसे चमकाते हुए उसके चेहरे से हाथ हटाने की कोशिश की थी, मगर चुप होने की बजाय वो एकदम फूट फूट कर रोने लगी थी। वो साकित खड़ा उसे देखता रहा था, फिर उसने कंधों से पकड़कर उसे बेड पर बिठा दिया था। ठीक है, मैं वापस आ जाता हूँ, लेकिन तुम ये रोना बंद कर दो, अलीज़ा ने उसे कहते सुना था, मगर वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि वो अपने आंसुओं पर काबू क्यों नहीं पा रही। उसे नहीं पता वो कितनी देर रोती रही थी। उसने दोबारा उमर की आवाज़ नहीं सुनी थी। काफ़ी देर बाद जब उसके आंसू थमे तो उसने आहिस्ता से चेहरा ऊपर उठाया। उसके बिल्कुल सामने ही उमर एक कुर्सी पर बैठा हुआ था। वो अंदाज़ा कर सकती थी कि इस वक्त इसका चेहरा क्या मंजर पेश कर रहा होगा। सूजी हुई आंखें, गीला चेहरा, सुर्ख नाक और उसमें से बहता हुआ पानी। इससे ज़्यादा बुरी वो और किसी हालत में भी नहीं लग सकती थी। इसने सर नीचे झुकाकर टी शर्ट की आस्तीनों से चेहरा साफ करने की कोशिश की। फिर नामहसूस अंदाज में टी शर्ट के कोने से नाक से बहता हुआ पानी साफ करना चाहा और इसी वक्त टिशू का डिब्बा इसके सामने आ गया। कुछ झिझक के बाद उसने दो टिश्यूज निकाल लिए थे। पानी चाहिए, बहुत नर्म आवाज में उससे पूछा गया और इसका सर अस्पताल में हिल गया। जब तक इसने टिश्यू से अपने चेहरे को खुश किया वो एक गिलास में पानी लेकर आ गया। उसने पानी पीने के बाद इसी खामोशी से गिलास वापस इसे थमा दिया था। रोना किस बात पर आया था, वो अब उसके पास बैठकर उससे पूछ रहा था। अलीज़ा को अब शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। उसे रोना नहीं चाहिए था, कम अज़ कम उमर के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। कराची में कोई बात हुई है क्या, अलीज़ा ने खौफ के आलम में सर उठाकर उसे देखा। वो बला का क्या फाशनास था, वो बड़े गौर से इसका चेहरा देख रहा था। अलीज़ा का दिल चाहा इसे बता दे कि इसके पापा ने उसके साथ क्या सलूक किया, मगर वो एक बार फिर रुक गई। इसकी आंखें एक बार फिर धुंधलाने लगी थी। इस पर उमर ने बड़ी नरमी से अपनी उंगलियों से आंसू पोंछ दिए थे। रोने से क्या होगा अलीज़ा, ज़िंदगी में तो बहुत कुछ फेस करना पड़ता है, हर बार आंसू प्रॉब्लम हल नहीं करते। उसका ख्याल था उमर उससे पूछेगा कि वहाँ ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से वो इतनी दिल गिरफ्तार थी, मगर उमर ने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। इसकी बजाय नरम लहजे में एक नसीहत की गई थी। चलो मैं तुमसे वादा करता हूँ, मेरे पास जब भी रुपये आए मैं तुम्हें एक घर ज़रूर गिफ्ट करूँगा। अलीज़ा ने हैरानी से उमर को देखा था। आई एम सीरियस, वो अलीज़ा की हैरानी को भांप गया था। मुझे घर नहीं चाहिए। तो फिर क्या चाहिए, कुछ भी नहीं, वो अभी भी इतनी ही मलोल नज़र आ रही थी। वो चुपचाप इसे देखता रहा। आप फिर यहाँ रहेंगे ना, उसने अचानक सर उठाकर उमर से पूछा था। हाँ रहूँगा, उमर को इसके चेहरे पर कुछ इत्मीनान नज़र आया था। वो उठकर खड़ी हो गई थी। फिर ये चीज़ें वापस रख दें, इसने बैग की तरफ इशारा किया। मैं रख दूंगा, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा क्योंकि मेरा बाकी सामान तो वहीं है, उसने कहा था। वो उठकर दोबारा अपने बैग की तरफ चला गया था। अब वो बैग में से चीज़ें वापस निकाल रहा था। एलिजा ने कुछ मुतमईन होकर उसे देखा था और कमरे से निकलने के लिए मुड़ गई। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रखते हुए इसकी नज़र कमरे के कोने में पड़ी हुई एक चीज़ पर पड़ी थी और वह ठठक कर रह गई।
अभी आप मुलाहिजा कर रहे थे नावल अमर बेल, लिटरेरिया एजुकेशन फाउंडेशन फॉर